नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री V.D. सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति M. पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी युकी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।